और मस्कुरा वाला सवाल का दूसरा जवाब यह है कि छोटे छोटे वाक़ियात की पेशगोइयाँ अगरचे खुदा के मुरसलों की सदाकत की वो भी एक काफ़ी दलील हैं, क्योंकि मकदार और कैफियत के लिहाज से इन पेशगोइयों में भी दूसरे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम जिन लोगों पर वसवसा और वहम गालिब है वो किसी न किसी वहम में गिरफ्तार हो जाते हैं। मसलन अगर किसी मामूर में अल्लाह की दुआ से किसी के घर में लड़का पैदा हो या वो मामूर लड़का पैदा होने की खबर दे और लड़का पैदा हो जाए तो बहुत से लोग बोल उठते हैं कि ये कोई ख़ास निशान नहीं। बतेरी औरतों को भी अपनी नस्बत या हमसाया औरत की नस्बत ख्वाबें आ जाती हैं कि उसके घर में लड़का पैदा होगा, तो फिर लड़का भी पैदा हो जाता है, तो क्या उस औरत को खुदा का नबी या रसूल या मुहद्दस मान लिया जाए? और गो ऐसे तवहमात में ये लोग झूठे हैं, मगर जाहिलों की ज़ुबान कौन बंद करे? और झूठे इसलिए हैं कि हम ये तो नहीं कहते कि किसी एक कौल और शाज़ो नादर वाक़िया से किसी का मिन जानिब अल्लाह होना साबित हो जाता है, ता हर एक ख्वाब देखने वाला खुदा का बरगुजीदा समझा जाए, बल्कि अव्वल दावा चाहिए, फिर ऐसी पेशगोइयाँ चाहिए जो अपनी अपनी कमियत और कैफियत की रूह से उस हद तक पहुँच चुकी हों कि जो मामूली इंसानों की ख्वाबों या इल्हामों की शराकत उनके साथ मुमतने हो। जैसा कि ऐसी पेशगोइयाँ छोटे छोटे वाक़ियात के मुतालिक जो मेरे ज़रिए से खुदा ने पूरी कं, उनका आदत कई हज़ार तक पहुँचता है। और कौन है जिसने तादाद और सफाई के लिहाज से उनका मुकाबला करके दिखलाया? चंद साल हुए हैं कि एक बदकिस्मत नादान ने एतराज़ किया था कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहेब जो इस कदर इखलास रखते हैं उनका लड़का फौत हो गया है। ये एतराज़ अगरचे निरा तासुब और जहालत की वजह से था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 लड़के फौत हुए थे, मगर मेरी दुआ पर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहेब के घर में लड़का पैदा होगा और उसके बदन पर फोड़े नमूदार हो जाएंगे, ता इस बात का निशान हो कि ये वही लड़का है जो दुआ के ज़रिए से पैदा हुआ। बस ऐसा ही वकूअ में आया और थोड़े ही दिनों के बाद मौलवी साहब के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल हई रखा गया, और उसकी पैदाइश के ज़माने के करीब ही बहुत से फोड़े उसके बदन पर निकल आए जिनके दाग अब तक मौजूद हैं। ये फोड़े खुदा ने इसलिए उसके बदन पर पैदा किए ताकि किसी को ये वहम पैदा ना हो कि ये इत्तिफाकी मामला है, दुआ का असर नहीं, और ना इसको पेशगोई पर दलालत कतई है। जैसा कि बाज़ औक़ात ऐसा इत्तिफाक हो जाता है कि चंद आदमी एक किसी गायब दोस्त का ज़िक्र करते हैं कि वो इस वक्त आते तो अच्छा था, और अभी वो ज़िक्र शुरू ही होता है कि वो खुद ब खुद आ जाते हैं, तब लोग कहते हैं आइए साहेब, अभी हम आपका ज़िक्र ही कर रहे थे कि आप आ ही गए। सो खुदा ने इस पेशगोई के साथ फोड़ों का निशान बतला दिया ता मालूम हो कि वो लड़का दुआ के असर से पैदा हुआ है, ना इत्तिफाकी तौर पर। ऐसे ही हज़ार हा मेरे पास नमूने हैं, मगर अफसोस मैं इस मुख्तसर रसाले में इनका ज़िक्र नहीं कर सकता। जैसा कि मैं अभी बयान कर चुका हूँ, छोटे छोटे वाक़ियात की पेशगोइयाँ जबकि हज़ारों तक उनकी तादाद पहुँच जाए तो इस बात की कतई दलील ठहरती हैं कि जिस शख्स के हाथ पर वो पेशगोइयाँ ज़ाहिर हुई हैं और जो मिनजाने बिल्ला होने का दावा करता है वो दर हकीकत मिनजाने बिल्ला है, लेकिन जिनके दिलों में शक और वसवसा की मर्ज़ है वो फिर भी शुबहात से बाज नहीं आते और फिलफौर कह देते हैं कि फ़लां फ़कीर ने भी तो ऐसी ही करामत दिखलाई थी और फ़लां ज्योतिषी साहब ने भी कुछ ऐसा ही फरमाया था जो सच सच निकला, और इस तरह पर ना वो सिर्फ़ ख़ुद गुमराह होते हैं बल्कि लोगों को भी गुमराह करते हैं। और ये नादान आँख तो रखते हैं मगर वो आँख हर एक गोशे को देख नहीं सकती, और दिल तो रखते हैं मगर वो दिल हर एक पहलू को सोच नहीं सकता। हमने कब और किस वक्त कहा कि बजुज़ हमारे और किसी को कोई ख्वाब नहीं आती और ना कोई इल्हाम होता है? बल्कि हमारा तजर्बा तो यहाँ तक है कि बाज़ वक्त एक अंजरी को भी जिसका दिन रात जनाकारी पेशा है सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। एक चोर भी जिसका पेशा बेगाना माल का सर का है बदरिया ख्वाब किसी सच्चे वाक्य पर इतला पा सकता है। हमारा दावा जिसको हम बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं वो ये है कि ऐसी ख्वाबें और ऐसे इल्हाम जो कमियत और कैफियत के लिहाज से हज़ारों तक उनकी नौबत पहुंच गई हो और कोई उनका मुकाबला ना कर सकता हो, یہ مرتبہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو عنایت الہی نے خاص طور پر اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دوسرے کو ہرگز نہیں ملتا۔ اور یہ کہ دوسروں کو شاذ و نادر طور پر کوئی سچی خوابیں آتی ہیں یا الہام ہوتا ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اگر وحی اور الہام کا دوسرے لوگوں پر قطعاً دروازہ بند رہتا تو خدا کے رسولوں پر کامل طور پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اور وہ ہرگز سمجھ نہ سکتے کہ در حقیقت ان نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے یا فریب ہے یا صرف وساوس میں مبتلا ہیں، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جس بات کا اس کو نمونہ نہیں دیا جاتا وہ پورے طور پر اس بات کو سمجھ نہیں سکتا اور آخر بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شراب خوار قومیں یورپ اور امریکہ کی، جن کے دماغ باعث شراب کے خراب ہو جاتے ہیں، اکثر سچی خواب کے وجود سے بھی منکر ہیں، کیونکہ اپنے پاس نمونہ نہیں رکھتے۔ بس اسی مصلحت سے کوئی سچی خواب اور کوئی سچا الہام نمونے کے طور پر لوگوں کو عام طور پر دیا گیا، تا جس وقت ان میں کوئی نبی ظاہر ہو تو دولت قبول سے محروم نہ رہیں اور اپنے دلوں میں سمجھ لیں کہ یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس سے چاشنی کے طور پر ہمیں بھی کچھ دیا گیا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ معمولی لوگ ایک گدا پیشہ کی مانند ہیں جس کے پاس چند روپے یا چند پیسے ہیں، مگر خدا کے مرسل اور خدا کے نبی وہ روحانی ملک کے۔ سامعین، یہ کتاب تجلیات الہیہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں آگے ناشر کی طرف سے ایک نوٹ ہے صفحہ نمبر 416 پر کہ باقی مسودہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔